पहाड़ और मेरा जीवन किस्त 22, आर्मी के सिनेमा हॉल में चोरी छिपे फिल्में देखना और कभी पकड़े न जाना। मेरी कक्षा में सेना के अफसरों के कई बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों के साथ कई किस्से हैं जो मुझे कभी भूलते नहीं। संजू वटके 5वीं से 7वीं तक मेरा सहपाठी था। मैं अपनी कक्षा में मेधावी छात्रों में गिना जाने लगा था, पर मैं खुरापाती भी बहुत था। हालांकि 6ठी में मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे हमेशा शराफत का आवरण ओढ़े रहना पड़ता था। हालांकि कई बार मन करता था तो मैं उस आवरण को उतार भी दिया करता था। संजू सेना के मेजर का बेटा था और अफसरों वाली कॉलोनी में रहता था। उसने अपनी दोस्ती के जरिए मुझे बहुत से सुख दिए। मैंने अगर जीवन में पहली बार अंदर से जाकर अफसरों का घर देखा तो वह संजू की वजह से था, क्योंकि वही एक दिन मुझे अपने घर ले गया था। एक बार उसने मुझे एक बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने साथ यानी अफसरों वाली जगह पर सोफे में बैठाकर फाइट दिखाई थी। पिथौरागढ़ में सेना की कई बटालियनें रहती थी और उनके बीच बॉक्सिंग, फुटबॉल आदि के टूर्नामेंट होते रहते थे, जिन्हें देखने को मैं मरा ही रहता था। संजू मेरी उस भूख को शांत करने में मदद करता। पिथौरागढ़ में उन दिनों सिर्फ दो ही सिनेमा हॉल थे। एक तो शहर में था सिनेमा घर लाइन में, जहाँ फिल्म देखने के पैसे लगते थे, और एक फौजियों का, जहाँ मैं मुफ्त में फिल्में देखता था। हालांकि ये बहुत जोखिम भरा काम होता था। क्या मुफ्त में देखना? हुआ यह कि एक बार संजू के माता पिता जब उसके साथ फिल्म देखने नहीं जा पा रहे थे, उसने मुझे साथ चलने का निमंत्रण दिया। भड़कटिया गांव से थोड़ा आगे जाकर ऊपर की ओर एक सड़क जाती है, जहां सेना के एक बैरक को फिल्म दिखाने के लिए हॉल जैसा बना दिया गया था। अंदर बीच में अफसरों के परिवारों के लिए खास सीटें लगी हुई थी, जबकि दोनों ओर जवानों और सूबेदारों के परिवार बैठते थे। मैंने संजू के साथ अफसरों वाली सीट पर बैठकर बहुत टसन से फिल्म देखी। मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि मैं फिल्मों का कितना दीवाना था। भाई के पत्थर खाकर भी दिल्ली में टीवी पर फिल्में देखने जाया करता था। जम्मू में रहते हुए भी एक बार एक प्राइवेट हॉल में माँ और हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी के साथ मैंने एक फिल्म देखी थी, जिसका नाम आज भी भूलता परवरिश था। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हीरो थे, जबकि नीतू सिंह और शबाना आजमी हीरोइन हैं। आज भी मुझे इस फिल्म के दृश्य याद है। और यह वाकया भी कि लौटते हुए जब हम बस में चढ़ रहे थे तो माँ ने एक पैर पायदान पर रखा ही था कि बस चल पड़ी। कुछ दूरी तक वह घिसटती गई, लोगों ने चिल्ला कर बस रुकवाई। मैं जब याद करता हूँ उस घटना को तो पाता हूँ कि माँ के यूँ घिसटने को लेकर मैं बहुत भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि घटना के वक्त भी मेरा सारा ध्यान फिल्म में था। मैं उसके दृश्यों को दिमाग में जी रहा था। संजू वटके के साथ पिथौरागढ़ कैंट के उस फौजी हॉल में मैंने कौन सी फिल्म देखी यह तो याद नहीं, लेकिन बाद में मैं संजू वटके के बिना भी वहाँ फिल्में देखने जाने लगा था। यह जोखिम का काम था, लेकिन वे बचपन के दिन थे। जोखिम से ही जिंदगी मैं रवानी बनती थी। उस फौजी हॉल में अकेले मुफ्त में फिल्म देखने के लिए मुझे बहुत जुगत भिड़ानी पड़ती थी। सबसे पहली चुनौती ही बहुत बड़ी हुआ करती थी अच्छे कपड़े पहनने की। अगर आपने कपड़े अच्छे पहने हैं तो हॉल के गेट पर जो CMP यानी कि मिलिट्री पुलिस का सिपाही खड़ा रहता है, वह आपको अफसर का बच्चा समझकर अंदर जाने देता है। मेरे पास सामान्य कपड़े तक नहीं थे, तो अच्छे कपड़ों की क्या बात करें। मैं रात में ही कोई धुली हुई नेकर करीने से फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख लेता, ताकि सुबह तक उसकी सलवटें कम हो जाए, क्योंकि प्रेस करवाने का ऐश्वर्य तब मेरे नसीब में था नहीं। नेकर से ज़्यादा बड़ी मुसीबत कमीज थी, क्योंकि नेकर तो तकिए के नीचे दबा कर फिर भी उसकी सलवटें कम हो जाती थी, लेकिन कमीज का क्या, वह तो बुरी तरह कुछ ऊँचाई हुई होती ही थी। अक्सर मैं कुछ ऊँचाई हुई कमीज के ऊपर स्वेटर पहन लेता था, ताकि कमीज दिखे ना। लेकिन असली चुनौती हॉल में पहुंचने के बाद शुरू होती थी। कपड़े में कैसे ही पहन लेता, शक्ल का क्या कर सकता था। अक्सर तो मेरी नाक बह रही होती थी। अगर वह बह नहीं रही होती थी तो सूखी हुई दिख रही होती थी। कक्षा 6 तक मुझे माँ नहलाया करती थी। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती जब वह आखिर में मुँह साफ करती थी, क्योंकि ऐसा करते हुए वह सूखी हुई नाक को भी अच्छी तरह साफ करने के यत्न में वहाँ इतनी ज़ोर से रगड़ती थी कि मैं दर्द से कराहने लगता। जिन लोगों को बचपन में नाक बहने का अनुभव है वे संभवतः इस तथ्य को बेहतर समझ पाएंगे कि होठों और नाक के बीच के उस क्षेत्र में जहां दो धाराओं के सूख जाने के बाद बचे हुए अवशेष का नामोनिशान मिटा देने की मंशा से जब हम खुद अपने हाथ से भी सफ़ेद रंग के उन जिद्दी कणों को साफ करने की कोशिश करते थे कितने दर्द में बिलबिलाते थे। हॉल के बाहर पहुंचकर मुझे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता कि किसी अफसर का परिवार आए तो उसके साथ निकल लूँ अंदर। अमूमन मैं एक ही बच्चे वाले परिवार की ताड़ में रहता। जैसे ही अफसर साहब उनकी पत्नी और बच्चा गाड़ी से उतरकर हॉल के गेट की ओर कदम बढ़ाते मैं उनके पीछे कुछ दूरी बनाकर चलने लगता और गेट के पास पहुंचकर उनसे थोड़ा सट जाता। अब सीएमपी की हालत ऐसी होती कि उसे अगर मेरी शक्ल पर नाक के अवशेष दिख भी जाते रहे होंगे तो भी वह इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता था कि अफसर और उसकी पत्नी से पूछे कि क्या मैं उनकी ही औलाद था। वह मुझे अंदर जाने देता। अंदर पहुंच मैं धीरे से एक और कट लेता लेकिन फिल्म शुरू होने से के पहले तक मेरी नज़र मुसलसल सीएमपी के सिपाहियों पर बनी रहती क्योंकि वे कई बार अंदर भी चेकिंग करने आते थे। जब भी वे अंदर चेकिंग करने आते मैं इधर से उधर और उधर से इधर होकर खुद को उनकी नज़र में आने से बचाता। एक बार फिल्म शुरू हो जाती तो मेरा पकड़े जाने का डर भी चला जाता क्योंकि अंदर अंधेरा हो जाता था और वहाँ अफसर भी फिल्म देख रहे होते थे, इसलिए भी कोई सीएमपी वाला बीच में अंदर आ कोई विघ्न पैदा करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। मैंने फौज के उस हॉल में कई फिल्में देखी। फिल्में देखने के बाद मेरा मन करता था कि किसी तरह घर पहुंचकर सो जाऊं क्योंकि सोने के बाद मैं खुद को हीरो के अवतार में देखने का सुख भोग सकता था। मैंने वहां कितनी फिल्में देखी याद नहीं, पर यह मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि कभी भी सीएमपी की पकड़ में मैं नहीं आया।